नमस्कार दोस्तों।
कोरोना की तीसरी लहर की चर्चा लगातार हो रही है। हम बार बार सुन रहे हैं कोरोना के नए वेरिएंट के बारे में, कभी डेल्टा तो कभी डेल्टा प्लस और कभी कम्पा, जिसके 11 मामले राजस्थान में मिले हैं। लेकिन सच तो यह है कि कोरोना के बदलते रूप और वैक्सीनेशन को लेकर अभी भी मन में कई उलझने बरकरार हैं। इसलिए ऐसे तमाम कंफ्यूजन दूर करने के लिए आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर अवधेश चंद्रा से। डॉक्टर अवधेश चंद्रा एम्स हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी में सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में।
धन्यवाद पूजा जी।
डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल यह है कि कोरोना की जो लहर आई नहीं, उसके आने के बारे में या उसके असर के बारे में अनुमान कैसे लगा लिया जाता है? वह क्या फॉर्मूला है जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि तीसरी लहर आएगी भी या नहीं? इसके बारे में क्या निश्चितता है, इस पर कुछ प्रकाश डालिए।
देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि तीसरी लहर कब आएगी और इसको लेकर क्या निश्चितता है। मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ, कोई भी अभी ये स्पष्ट रूप से नहीं बोल सकता कि तीसरी लहर कब आएगी। लहरों का सिलसिला आगे निरंतर जारी रहेगा, लहरें आती रहेंगी, लेकिन वो कितनी गंभीर होंगी, उसके कितने गंभीर परिणाम होंगे, ये अभी कहना मुश्किल है।
जी बिल्कुल।
जैसा कि हम लोग सुन रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी, इसका निर्भर जो भी करता है, निर्भर वो करता है देश की जनता पर। आप ये देखिए, देश की जनता ने सारे नियम और कानून को ताक पर रख दिया है। डेली आप न्यूज़ देखते हैं कि मनाली में है, धर्मशाला में, या किसी भी पर्वतीय क्षेत्रों में भीड़ का आलम जो देख रहे हैं आप।
जी बिल्कुल।
लेकिन जिस प्रकार से वैक्सीनेशन हो रहा है और वैक्सीनेशन को हम जितनी तेजी से बढ़ा सकते हैं, तो हम कहीं हद तक तीसरी वेव को रोक सकते हैं। देखिए, महामारी की लहरों का संबंध जो होता है नए वेरिएंट से होता है, नए स्ट्रेन से होता है, इनसे भी लहर आने की संभावना बनी रहती है।
जी बिल्कुल।
लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, टीकाकरण एक ही समाधान है तीसरी लहर को जो कम कर सकता है। तीसरी लहर उतनी गंभीर नहीं होगी जितनी की दूसरी और पहली गंभीर पहली थी। दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई, ये आपने देखा न्यूजों में। अब डेल्टा प्लस आ गया है, डेल्टा प्लस से डेथ हो रही है लेकिन उतनी नहीं हो रही है जितनी की होनी, मतलब जिस तरीके से हो रही थी। तो मेरा ये मानना है, आप ये ध्यान रखिए, पब्लिक को ये ध्यान रखना पड़ेगा, अभी केसेस 100 से नीचे आ रहे हैं दिल्ली में या हिंदुस्तान में, कुछ हजारों में आ रहे हैं। जिस दिन ये ट्रेंड बढ़ना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए तीसरी वेव आपके तरफ बढ़ रही है।
तो क्या इसे रोका नहीं जा सकता, या अगर हम इसे रोक सकते हैं तो इसे कैसे रोक सकते हैं?
देखिए, एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसको हम अगर फॉलो करते हैं तो हम तीसरी वेव की संभावना को थोड़ा कम कर सकते हैं। लेकिन देश में 1.5 अरब की जनसंख्या है, कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, फॉलो नहीं करते हैं उन चीज़ों को, तो उस चीज़ को भी देखना पड़ेगा। कोई छोटा मोटा देश नहीं है, हमें दूसरे देशों से अपने देश को कंपेयर नहीं करना है। हम 4-5 करोड़ के पॉपुलेशन वाले देश से अपने देश को कंपेयर करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि लोगों को कुछ समझना चाहिए, सारी जिम्मेदारियाँ सरकार की नहीं होती हैं, कुछ जिम्मेदारियाँ जनता की भी होती हैं।
जी,
तो जनता को चाहिए कि भाई देख रहे हैं कि कोरोना फैल रहा है, कोरोना को कैसे रोकना है, क्या नहीं रोकना है, मिलना कम करना चाहिए, अगर मिल रहे हैं तो 2 मास्क लगा लीजिए, आप मत हाथ मिलाइए, ज्यादा देर मत बात करिए, वैक्सीनेशन करा लीजिए, वैक्सीनेशन कराने के बाद आप थोड़ा मिलें, कंट्रोल करें, बाकी जितने भी मतलब पैरामीटर्स हैं वो अपनाइए।
जी सही कहा आपने।
तो आप तीसरी वेव को रोक सकते हैं, नहीं करेंगे तो देखिए, आपने अप्रैल मई में देखा किस हिसाब से लोगों की जानों की क्षति हुई है।
जी डॉक्टर साहब,
तो मेरा मानना है आप एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसको अपनाइए।
कोविड महामारी ने ये जो रूप ले रखा है अवधेश जी, आपकी निगाह में उसकी वजह क्या है?
देखिए, किसी भी बीमारी के लिए 3 फैक्टर बहुत जरूरी होते हैं। पहला एजेंट यानी कोविड के केस में वायरस, दूसरा होस्ट यानी कि इंसान मनुष्य, तीसरा है एनवायरनमेंट। इन तीनों के माध्यम से बीमारी पैदा होती है। अब देखिए, अब कोविड पेंडेमिक के लिए एजेंट यानी वायरस 4 से 5 महीने के अंदर अपना रूप बदल रहा है, जैसा कि आप जानते हैं, पढ़ भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं।
बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं आप।
अब म्यूटेंट वायरस जो होता है यही बीमारी और तीसरी लहर को पैदा करने में सक्षम है
जी डॉक्टर साहब,
क्योंकि ये रूप बदल रहा है। बार बार जब इसका रूप बदला जाएगा तो बीमारी फैलने के चांसेस रहते हैं, जिससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि तीसरी लहर आएगी। दूसरा होता है होस्ट। जब किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तब उसके अंदर एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो एक कवच का रूप काम करती है बीमारी से बचाने के लिए। वो 6 महीने या उससे अधिक समय तक रह सकती हैं, जो उस मनुष्य को दोबारा रीइन्फेक्शन ना हो उससे बचाती हैं। जब वो कम होने लगती हैं तो अब हम मान सकते हैं कि भाई कोई अन्य वेव आ सकती है
जी।
अब क्या है कि हमें ये देखना होगा, जब भी एनवायरनमेंट, जिसे हम बोलते हैं एनवायरनमेंट, जब कोई वेव खत्म होती है तब जनता जनार्दन अपना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर भूल जाती है, मिलना शुरू कर देती है, पार्टियां शुरू कर देती है, जिससे क्या होता है कि इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं
जी।
और हम नई वेव को आमंत्रित करते हैं, हम लोग खुद करते हैं आमंत्रित। भाई जब आप क्या करें, आप बिहेवियर अपना नहीं सुधारेंगे तो वेवें आती रहेंगी और वायरस फैलता रहेगा। इसका एक ही उपाय है पूजा मैम
जी,
कि हम वैक्सीनेशन की ड्राइव को जितनी जल्दी समझ जाएं और जितनी जल्दी देश की जनता को लगा दें।
डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे वैक्सीनेशन के बारे में जानना चाहती हूँ, इसे लेकर बहुत कंफ्यूजन बरकरार है। एक सवाल तो यह भी मन में उठता है कि कोरोना की तीसरी लहर पर क्या यह वैक्सीनेशन असरदार होगा?
पूजा जी, तीसरी लहर हो या आगे आने वाली अन्य लहरें, वैक्सीनेशन के अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। इसलिए टीकाकरण बहुत जरूरी है और जिंदगी का कवच ही टीकाकरण है। अच्छा, जिन्होंने पहली डोज ली है वैक्सीन की, उनको थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन मिल जाता है, निश्चित मिलता है, 30-40% उनको प्रोटेक्शन मिल जाता है। और जिन लोगों ने दोनों डोज ली हैं, वह जनता 90% तक सुरक्षित है, उनकी बीमारी सीरियस नहीं होगी, हॉस्पिटलाइजेशन उनके चांसेस बहुत नगण्य हो जाते हैं
जी,
और डेथ को हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं। यह मेरा अपना पर्सनल मेरा व्यू है
जी।
वैक्सीनेशन जरूर कराइए, इसके अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, भारत के आप वासी हैं, आप जो कोविन ऐप है उसके माध्यम से अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं किसी भी शहर में, वहाँ आपका रिकॉर्ड मिल जाता है। और सरकार इस पे और भी कार्य कर रही है, इसको और सरल कर देगी आने वाले टाइम में
जी।
अब आपने कहा पहली डोज दूसरी डोज, मैं आपको बता दूं, फिर मैं बताऊंगा, ये मेरा व्यू है कि आने वाले समय में जिस हिसाब से वेरिएंट्स बदल रहे हैं, म्यूटेशन हो रही है, हमको बूस्टर डोज की भी जरूरत पड़ेगी।
आपने भविष्य में बूस्टर डोज की बात कही, लेकिन बूस्टर डोज से पहले अभी तो वैक्सीन को लेकर ही कंफ्यूजन बना हुआ है। मसलन क्या पहली डोज लेकर छोड़ दें, यानी दूसरी डोज ले ही नहीं, तो क्या हम सुरक्षित नहीं हैं? दूसरी डोज लेना कितना जरूरी है, या दूसरी डोज कब लें, या फिर यह है कि पहली डोज कितने दिनों तक असरदार रहती है?
जी पूजा मैम, जैसा आपने कहा पहली डोज लेनी है नहीं लेनी, दूसरी कब लेनी है नहीं लेनी है, क्या फायदे होंगे, कितना प्रोटेक्शन होगा, तो मैं आपको ये जवाब देना चाहता हूँ
जी।
अगर किसी सज्जन को कोविड हुआ है
जी,
तो कोविड रिकवर होने के 6 महीने तक उसके अंदर खुद की नेचुरल एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं, जिसके लिए उसको वैक्सीन की जरूरत नहीं होती है। 6 हफ्ते बाद वो अपना एक एंटीबॉडीज टेस्ट करा ले और वो जिसकी जो भी उसकी मात्रा हो उसके हिसाब से वो वैक्सीन लगवा ले। अब पहली वैक्सीन अगर वो लगवाता है तो आपने मुझसे पूछा कितना प्रोटेक्शन मिलेगा
जी,
इसके पीछे अपने अपने अलग अलग तर्क हैं। जैसे कोविशील्ड के अंदर बोला गया है कि 12 हफ्ते तक, लंदन में एक रिसर्च हुई कि 12 हफ्ते तक इसकी एंटीबॉडीज बनती हैं, उसके बाद वो थोड़ी सी कम होने लगती हैं, तब 12 हफ्ते के बाद उनके अंदर सेकंड डोज को दिया जाता है
जी।
और कोवैक्सीन के अंदर पहली जो डोज के 30 से 40 दिन बाद दूसरा वैक्सीनेशन किया जाता है। जब मैं आपको बता दूं, पहले हफ्ते से दूसरे हफ्ते के अंदर प्रोटेक्शन दिखना शुरू हो जाता है
जी।
और यह समय समय के साथ बढ़ता है
जी।
कुछ लंबे समय के अंतराल के बाद यह घटना भी शुरू हो जाता है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं इसकी अभी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, जितना मुझे लगता है घटता है, इसीलिए हम दूसरी डोज की जरूरत पड़ती है हम लोगों को। लंबे समय तक वैक्सीन का प्रोटेक्शन हमें सेकेंड डोज के बाद ही मिलेगा, दूसरी डोज के एक या दो हफ्ते बाद हम देखेंगे हमें 90-94% प्रोटेक्शन मिल चुका है। इसलिए वैक्सीनेशन कराना बहुत ही जरूरी है।
आपकी बात से यह बात समझ में आ गई कि वैक्सीन के अलावा इस कोविड से बचने का फिलहाल कोई उपाय नहीं है, हमें वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए। अब आखिरी बात ये कि आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
पूजा मैम, मेरे देश की जनता से यही एक अपील है कि जो कोविड के नियम हैं उसको अच्छे से पालन करें
जी,
क्योंकि अभी ये कोविड आसानी से अभी साल एक साल दो साल में ख़त्म नहीं होगा। मुझे पर्सनली लगता है कि ये 3-4 साल तक हमारे जिंदगी में बना रहेगा
जी।
हमें बहुत सी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, जो भी एप्रोप्रिएट बिहेवियर है कोविड का उसको फॉलो करना चाहिए, जैसे कि मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, हाथ को सैनिटाइज करना है, ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। और चौथा है टीकाकरण
जी।
अगर टीकाकरण हम करा लेते हैं, अगर हम दिसंबर तक भारत की जनता को 75% टीकाकरण हो जाए, तब हम कोविड को कई हद तक रोक पाएंगे
जी।
मेरी एक आप जो श्रोता मुझे लोग सुन रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, जो लोग टीकाकरण पे भ्रमित हो रहे हैं उनके भ्रम को दूर करिए। कोई टीकाकरण से आपको हानि नहीं होगी। तो एक ही मेरा आप लोगों से अनुरोध है, जल्द से जल्द टीकाकरण को की मुहिम को तेज कराइए और इसको लगवाएं और दूसरों को प्रोत्साहित कीजिए।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर अवधेश चंद्रा जी, आपने हमें और हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियां दी।
धन्यवाद पूजा जी, जो आपने मेरे को ये प्लेटफॉर्म दिया, मैं आपका सादर धन्यवाद बोलता हूँ। नमस्कार।
तो साथियों, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अवधेश चंद्रा को, यह एम्स में सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट हैं। एक बार फिर आपकी और हमारी ओर से डॉक्टर अवधेश जी को शुक्रिया। अगली बार हम फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ सवालों के साथ किसी और विशेषज्ञ से। तब तक के लिए पूजा प्रसाद को दें इजाजत। नमस्कार।